हरे कृष्णा। श्री धाम कौंडिपुर में विठल रुक्मणी के शरण में गिरिराज धरण के चरणों में अंबिका माता जी के आशीर्वाद से रुक्मणी देवी साक्षात लक्ष्मी के आंचल में बैठकर हमको श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप के श्रवण का शुभ अवसर हुआ मिला है। उषा देवी गुप्ता परिवार की ओर से ये तीसरे दिन के भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ा और द्रोण पुत्र अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांच पांडव और अभिमन्यु के अंश भविष्य में भागवत के प्रकट्य के कारण परीक्षित महाराज का रक्षा किया। अद्भुत अस्तुति कुंती महारानी की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया और कुछ अधिक समय के लिए हस्तिनापुर में पांडवों के हित करने के लिए रुक गए और युधिष्ठिर महाराज को राज न करने का संकल्प देखकर युद्ध से होने वाले हानि से युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सरसैया के ओर चलने के लिए प्रेरणा दी और अब पांडव कुरुक्षेत्र की तरफ चल रहे हैं और भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरायण किसको कहते हैं वैसे? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण कहते हैं, प्रायः 14 जनवरी को आती है। साल के दो पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 ऋतु होती है, 12 महीने होते हैं। तो उत्तरायण का एक अर्थ तो ये है कि शुभ समय है शरीर त्यागने का और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन भीष्म पितामह की उत्तरायण कौन सी है? जैसे नारायण शब्द है, रामायण शब्द है। नारायण का मतलब नार जल में शयन करने वाला, रामायण का मतलब है राम का अयन, राम का घर। ऐसे उत्तरायण का एक अर्थ है उत्तरा के गर्भ में जो श्री कृष्ण प्रवेश हुए थे, इसका मतलब उत्तरायण है श्री कृष्ण। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उत्तरा के उधर में चले गए थे। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं श्री कृष्ण मेरा सहोदर है। सहोदर संस्कृत में भाई को कहते हैं, उसी पेट में आया हो, उधर को उधर में उसी उधर में जो आया हो। तो परीक्षित कहते हैं श्री कृष्ण उसी उधर में आए थे जिसमें मैं था, तो मेरे भाई हैं, मुझसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। तो उत्तरायण की यहां परिभाषा है श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का संकल्प किया, सारे ब्रह्मांड से ऋषि वहां आने लगे। सब ऋषियों का नाम है, अत्रि आया, अगस्त आया, गौतम आया, कणाद आया, पिपलायन आया। परशुराम जी अपने शिशु के साथ आए, बादरायणी आए, ये जितने ऋषि हैं ये सब आए। उनको आश्चर्य लगा कि भीष्म पिता जैसा अखंड ब्रह्मचार्य धारण करने वाला, वन में रह के ब्रह्मचार्य धारण नहीं किया, राजमहल में रह के ब्रह्मचार्य का धारण किया था। इच्छा मृत्यु के वरदान पिता का भक्त आज शरीर त्याग रहा है तो कोई अनहोनी जरूर होने वाली है, कुछ न कुछ आश्चर्य होगा। चलो चलते हैं। और सब आ गए और भीष्म पितामह के सीधे तरफ, सीधे हाथ की तरफ सब ऋषिगण बैठे हैं। भीष्म पितामह ने सबका स्वागत किया यथा आदर, और तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ आए और भीष्म पितामह के वाम भाग में उल्टे हाथ की तरफ आगे महाराज युधिष्ठिर, फिर भीमसेन, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव ऐसे खड़े हो गए। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर के मुकुट को देखा तो प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था शांतनु को, जब तक हस्तिना का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं आएगा तब तक मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा। आज भीष्म पितामह इस ऋण से उत्तीर्ण हो गए कि आज हस्तिनापुर का सिंहासन धर्मराज के हाथ में है। और फिर कहते हैं कृष्ण कहां है, पांडवों से पूछा कृष्ण कहां है, और कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े थे। जहां भगवान भीष्म पितामह के चरण थे वहां कृष्ण खड़े थे, और कृष्ण को देखा तो हृदय में जो हमेशा कृष्ण का ध्यान करते थे उस कृष्ण का को प्रणाम किया। उसके बाद भीष्म पितामह को कृष्ण ने आंख के इशारे से कह दिया हो कि आपका ये पोता, बड़ा पोता युधिष्ठिर महाराज राज नहीं कर रहा। तो भीष्म पितामह ने उनको समझाने के लिए एक प्रश्न पूछा, कहा महाराज युधिष्ठिर आप तो धर्मराज हो, आपके पांचों भाई धर्म के ऊपर चलते हैं, ब्राह्मणों के तो आप महान सेवक हो, और उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान आपका साथी है, सारथी है, संदेशवाहक है, फिर आपके जीवन में इतना दुख कैसे आया, इतने संकट, इतने विकट परिस्थितियां कैसे आई, वनवास भोगना पड़ गया, द्रौपदी का अपमान सहना पड़ गया, आखिर क्यों? तो युधिष्ठिर महाराज शांत रहे। भीष्म पितामह ने कहा काल बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, काल बलवान है, ये काल का काम है। और फिर भीष्म पितामह ने उंगली उठा के कहा ये काल श्री कृष्ण के इशारे से काम करता है, ये काल श्री कृष्ण के इशारे से काम करता है, आपके जीवन में जो भी संकट आए ये कृष्ण की इच्छा से आए, ये आपके कर्मों के नहीं है। कृष्ण आपको जैसे सोने को तपा के कुंदन किया जाता है, आपको इन परिस्थितियों से निकाल के और विश्व में विख्यात धर्मराज युधिष्ठिर और पांच पांडवों को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहते थे। तो युधिष्ठिर कहता है फिर हमको ये पहले क्यों नहीं पता लगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं इनके मन की बात शंकर जी, नारद आदि ऋषि, कपिल जैसे सिद्ध महात्मा भी पूरी नहीं जानते हैं, तो हम और आप कहां से जान सकते हैं। इनके भावों को तो महाजन मुश्किल से जानते हैं। और उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं ये वैसे सबके साथ समभाव रखता है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, लेकिन देखो इस वक्त मेरे को जब मैं शरीर त्यागने वाला हूं तो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, जो योगियों को ध्यान करते समय थोड़ी देर के लिए मन में नहीं बैठते हैं वो मुस्कुराते हुए मेरे शरीर त्यागने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, यहां रुकेंगे, मेरे को दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब भीष्म पितामह शरीर त्यागने की तैयारी कर रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज को कहो जो कुछ पूछना है पूछ लो, इस धरती के ऊपर इनसे ज्यादा बड़ा शास्त्र का मर्मज्ञ विज्ञान कोई ही ज्ञाता नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं एक एक इंच के ऊपर तो बाण लगा हुआ है, शरीर पूरा बीधा हुआ है, इस कष्ट में इससे कैसे मैं प्रश्न पूछूं। भगवान ने एक दृष्टि भीष्म पितामह के ऊपर डाली, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई, दर्द समाप्त हो गया, और ये पहले महात्मा है, सोए सोए प्रवचन दिया। और भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, नारी का धर्म क्या है, वर्ण आश्रम का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है। और भीष्म पितामह जिन्होंने किसी युद्ध में हराया नहीं था, पूरे विश्व के अंदर भ्रमण किया था, उन्होंने सब सब प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया, राजधर्म का उत्तर दिया, नारी धर्म का उत्तर दिया, वर्णाश्रम धर्म का उत्तर दिया, राजधर्म का उत्तर दिया, और युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट हो गए। और जब समय बिल्कुल मुहूर्त उनके शरीर त्यागने का आया, उस समय भीष्म पितामह ने सब जगह से अपने मन की वृत्ति को हटा के श्री कृष्ण को 11 श्लोकों में प्रार्थना की। तो ये 11 श्लोकों का अजहान थोड़ा पाठ करके फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और यहां सब ऋषि बैठे हैं, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि बैठे हैं। परशुराम भगवान का एक अवतार, श्री कृष्ण भगवान का दूसरा अवतार, और व्यास देव तीसरा अवतार, नारद चौथा अवतार, ये सब बैठे हुए हैं यहां। और ये 5 पांडव भी देवताओं के अंश इनके अंदर विराजमान है, एक में धर्मराज, एक में वायुदेव, अर्जुन के अंदर इंद्र, नकुल सहदेव में अश्विनी कुमार। ऐसे दिव्य वातावरण में भीष्म पितामह हाथ जोड़ के पहले कहते हैं, श्री भीष्म वाच, ये भीष्म पितामह के शब्द हैं, इतिमति उपकल्पिता वितर्षणा भगवती सात्वता पुंगवे विभूमिने। इति मति, ये जो मेरी मति है, आपको हमने परसों बताया था, मति बुद्धि को कहते हैं, वो बुद्धि जो भविष्य में किसी को ग्रहण करे। तो भीष्म कहता क्या कहते हैं कि मेरी ये मति जो है, मेरी ये बुद्धि जो है, इसमें अब कोई संसार की तृष्णा नहीं है, कुछ इसको चाहिए नहीं, उपकल्पिता मैं आपको अर्पण करता हूं। गीता में भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि अर्पण करो, मयो अर्पत मनो बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि मुझे दो। और भीष्म पितामह ऐसा महात्माएं कहते हैं मेरी बुद्धि आप लो। महात्मा लोग इसका भाव कहते हैं, उपकल्पिता का अर्थ ये है, भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक कुंवारी कन्या है और आज मैं श्री कृष्ण आपको अर्पण करता हूं, आप इसका पाणि ग्रहण कर लीजिए, आप इसको विवाह में अपने साथ ले लीजिए, इसका वरण कर लीजिए। अरे भीष्म पितामह महाराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी कन्या कहां से आई? बोला ये मेरी बुद्धि कन्या है, ये बुद्धि रूपी मेरी कन्या है, इसको कोई संसार में तृष्णा नहीं है, आज आप इसका पाणी ग्रहण करो, आज इसको आप वर लो, आप इसको स्वीकार कर लो। फिर भीष्म पितामह का भाव ये है कि देखो, जिसको अपना पुत्र होता है तो कन्या को विवाह कर देता है, लेकिन पुत्र ही नहीं है तो कहेगा घर जमाई बन जाओ। तो श्री कृष्ण आप आके मेरे हृदय में मेरी बुद्धि को वरण करके मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, मेरे घर के जमाई बन जाओ। भीष्म पितामह का भाव ऐसा है। वैसे भगवान कहते क्या है, मई एव मन आधस्त्व मई बुद्धि निवेशया, बुद्धि में मुझे निवास कराओ। मत जैसे अर्जुन ने भगवान को कहां बिठाया है, सारथी की जगह पे, सारथी बुद्धि है शरीर का, जो शरीर में की बुद्धि में भगवान को बिठाता है वो बुद्धिमान है। तो भीष्म कहता है, भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि को आप वरण कर लीजिए। और फिर कहते हैं आप कौन हैं, भगवती सात्वता पुंगवे विभूमिनी, ये महान आप भक्तों के महंदार हैं, भक्तों के अग्रणीय हैं, भक्तों का देखभाल करने वाले हैं। सात्वत कहते हैं भक्तों को और पुंगवे कहते हैं उनके लीडर को। और फिर कहते हैं ससुखम उपगते क्वचित वहर तुम, आपकी इच्छा से कभी आप चाहें तो इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। प्रकृतिम और प्रकृतिम उपयोष यद भव प्रवाह, ये आपकी शक्ति इस संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर चलाती है, संसार की सृष्टि करती है, लेकिन आप जब इसमें आते हैं अपनी स्वयं अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने विहार के लिए और भक्तों का नेतृत्व करने के लिए आते हैं, अब दूसरे श्लोक में भीष्म पितामह अपनी बुद्धि रूपी कन्या को वर का सुंदर दर्शन करा रहे हैं। दूसरे श्लोक में भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। कैसे हैं श्री कृष्ण? त्रिभुवन कमनम, तीनों लोक जिसके दर्शन की कामना करते हैं, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे मनोहर हैं कि तीनों लोक उनको पाना चाहते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, यहां पीछे हमारा तमाल वृक्ष है। तमाल वर्णम, वर्ण का मतलब जिनका रंग तमाल जैसा है, सांवला उनका रंग है। रवि कर गौरव रामबरम दधाने, रवि कर गौरव, सूर्य के तेज किरणों से पीला पीतांबर सोने की तरह चमक रहा है। रवि कर गौरव अंबरम, अंबर कहते हैं वस्त्र को, आपके वस्त्र सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमक रहे हैं। वपुअलक कुलावृतम अनाभजम, और आपके सुंदर मुख मंडल के ऊपर चंदन का तिलक लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगा हुआ है, मुख आपका सुशोभित हो रहा है। विजय सखेरत्यस्तु में अनादया, विजय सखे अर्जुन, अर्जुन का नाम है विजय और उसका सखा है भगवान श्री कृष्ण, या विजय नाम है कृष्ण का, अर्जुन उसका सखा है। अर्जुन के सखा हमेशा सदा अर्जुन को विजय प्राप्त दिलाने वाले मेरी रति, रति कहते हैं भाव को, प्रेम को, मेरा प्रेम आप में हो और संसार के किसी पदार्थ में नहीं हो, किसी भोग में नहीं हो, तो सुंदर भगवान के रूप का वर्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कितने सुंदर शब्द हैं। सांवले रंग के तीनों लोकों को कामनीय है, सबकी इच्छा है उनका दर्शन करें, और सूर्य के प्रकाश में ये क्या है, भीष्म पितामह दर्शन कर रहे हैं अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण का, और युद्ध भूमि में ऐसे सूर्य के किरणों से अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के सुंदर उस स्वरूप का वीर रस के कारण भीष्म पितामह वीर रस भगवान की वीरता का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे उनको दर्शन करने के बाद भीष्म पितामह तीसरे श्लोक में कहते हैं, अभी उनको श्री कृष्ण का वो रूप याद आ गया। कौन सा रूप याद आया? युधि तुरग रजो विधुमर विश्व का, युधि तुरग रजो विश्वक, घोड़ू के टापू से उड़ी हुई धूली, आपके परिश्रम से पसीने वाले चेहरे और बालों के ऊपर जमी हुई सांवला रंग, उसके ऊपर भूरी धूली, वो भी घोड़ू के टापों से युद्धभूमि में उड़ी थी, वो आपके मुख मंडल को सुशोभित कर रही थी। कचो ललित शर्मवारी अलंकृतस्या, आप के बालों के ऊपर वो जमी हुई थी। मम निषित शरीर विभिध्यमाना, और मैंने तीखे बाणों से आपको मैंने जगह जगह पे घाव कर दिए थे, और उसमें से दिव्य रक्त के बूंदे दिख रही थी। त्वचि विलसत कवच अस्तु कृष्ण आत्मा, आपका कवच मैंने तोड़ दिया था, लटक रहा था। ओ कृष्ण, मेरा मन उस आपके सुंदर रूप में डूब जाए, लग जाए। देखो गोपियां हैं ना, शाम के वक्त गोधूली का समय कहते हैं। गोधूली का समय का मतलब जब शाम को गाय आती है ना तो उनके खुर से धूल उठती है, तो गा धूली को देखकर गोपियां कहती हैं इसके बाद कृष्ण आएगा, और कृष्ण को भी गोधूली लगी होती थी। तो ये तो है गोपियों को सुंदर दर्शन, लेकिन भीष्म पितामह युद्ध में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूली से सुशोभित तो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने मेरे बाण में कितना निर्दयी था, मैंने आपके कोमल शरीर पे बाण मारे थे, आपका कवच तोड़ दिया था, और मैं उस आपके वीर रूप का दर्शन कर रहा हूं। और इस दर्शन के बाद आगे कहते हैं ये बहुत इसके भाव अति उत्तम है, बहुत अति उत्तम है। जैसे प्रेमी का प्रेमी को दांतों से काटे तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे श्री कृष्ण को भीष्म पितामह के बाण अच्छे लगे थे, क्योंकि प्रेम इतना था दोनों के बीच में। भीष्म पितामह ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौरवों का सेनापति होना स्वीकार किया था, जबकि वो कृष्ण का भक्त था, लेकिन अगर भीष्म पितामह कौरवों की तरफ नहीं जाता तो कौरव लड़ते नहीं, तो धरती का भार कैसे उतरता, पापियों का भगवान खात्मा कैसे करते, समाप्ति कैसे करते। तो भीष्म पितामह जैसे भक्त कभी कभी भगवान के विरुद्ध में खड़े होकर भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब कहते हैं सपदि सखी वचो निष्मय मध्य, जब अर्जुन ने आपको कहा सेनियोर उभ्योर मध्य रथ स्थाप्य में अच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, निज परयोर बलयोर रथम निवेशया, आपने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को तो खड़ा किया, लेकिन आपने क्या किया, स्थितवती परसे नकायुर अक्षण, आपने एक नजर डाली, आपकी आंखों ने के बाणों से कौरवों की सेना का तो आपने बल हरण कर लिया और सबको मार दिया। तो किसने मारा था कौरवों को, क्या पांडवों के बाणों से मरे थे? नहीं, कृष्ण की नजर से मरे थे, और जिनको मारा था हृतवती पार्थ सके रति ममास्तो, जिनको आपने उनका बल हरण कर लिया, वो तो पुतले की तरह खड़े थे, आपने उनके प्राण, असल में तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा था कि जिन्होंने भी तुम्हारे केशों को हाथ लगाने वालों का समर्थन किया है या चुप रहे हैं उन सब की आयु मैंने समाप्त कर दी है, ये तो मूर्ति की तरह खड़े हैं, ये मरे हुए समझो। और एक बब्रुक वाहन नाम का अर्जुन का पुत्र है, उसमें इतना सामर्थ्य था कि एक दिन कहा कि मैं सारे कौरवों को एक बाण से नाश कर दूंगा और जिसके पक्ष में कोई नहीं होगा उसका साथ दूंगा। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि इस वट वृक्ष में जितने पत्ते हैं पीपल के पेड़ में सबको एक बाण से छेदन करो, उसने एक बाण मारा सब पत्तों में सोराख हो गया, एक पत्ता भगवान के पांव के नीचे दबा रखा था, बाण वहां घूम रहा था। भगवान ने समझा कि ये तो सबको समाप्त कर देगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अर्जुन ने कहा इतना महान बलि था भगवान आपने ऐसे क्यों किया, बोला ये न्याय अपने हाथ में ले रहा था, सबको मारता तो कितने कितने क्षत्रियों ने वचन कर रखे हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वो सब कैसे पूरा होगा। तो उस वक्त उस सर ने कहा, बब्रू वाहक के सर ने कहा, उसको खाटू श्याम जी कहते हैं राजस्थान वाले, मारवाड़ी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसने कहा कि मैं युद्ध का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तुम्हारे को ऊपर एक पर्वत के ऊपर नेजे पे रख देंगे, तुम युद्ध को देखते रहना, और जब युद्ध पूरा हो गया तो कोई कह रहा है मैंने उसको मारा, कोई कह रहा है मैंने उसको मारा, भगवान ने कहा बब्रू वाहन से पूछो किसने किसको मारा, और बब्रू वाहन से जब पूछने गए तो वो कहा कि केवल सुदर्शन चक्र सबका गर्दन काट रहा था, बाकी तो बाण चला रहे थे, काम तो सारा कृष्ण ने किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं आपने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ क्या खड़ा किया, एक नजर से कौरवों की सेना की तो आयु को हर लिया, आपने पांडवों का बहुत बड़ा हित किया, लेकिन उससे बड़ा हित तो इनका हुआ जिन्होंने आपका दर्शन करते हुए शरीर त्यागा, जिन्होंने आपका दर्शन करते हुए शरीर त्यागा वो तो भगवान के धाम गए। तो अर्जुन से तो ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं कि मैं आपको सामने देख रहा था, अर्जुन तो आपकी पीठ की तरफ था और मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरा सौभाग्य कैसा है, हे पार्थ का सखा, हे कृष्ण के मित्र, मेरा मन आप में लगे, मेरा मन आप में लगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपने उन सब की आयु हर ली थी। अब आगे कहते हैं, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्षये स्वजनम वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमरदात्म विद्या यश चरणरति परमस्य तस्य मे अस्तु। अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन की बुद्धि में मोह आ गया था और आपने उनकी कुमति को हरण करके गीता का दिव्य उपदेश देके उसको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित किया था। श्री कृष्ण, आपके चरणों में मेरी रति हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, परमस्य तस्य मे अस्तु। हे भगवान, आपके चरणों में मेरी, आपने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। अब गीता का उपदेश याद आया, भीष्म पितामह को रणभूमि में कृष्ण की लीला याद आ रही है, और अब भीष्म पितामह आगे बहुत विशेष श्लोक कहते हैं। स्वनिगमम अपहाय मम प्रतिज्ञा, आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मेरे वचन की लाज रखी। अर्जुन और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। भीष्म पितामह ने एक दिन वचन कर लिया। भीष्म पितामह के पास दुर्योधन ने जाकर कहा, युद्ध के आठवें दिन, पितामह आप पांडवों से प्रेम करते हैं, मेरे भाई रोज गाजर मूली की तरह भीम मार के काट रहा है और पांडवों का एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं मरा, आप दिल लगा के लड़ रही रहे हैं, अगर मेरा मित्र कर्ण होता तो आज मेरे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। भीष्म पितामह क्षत्रिय था, पांच बाण निकाले का पारत दुर्योधन, ये पांच बाण कल पांडवों के लिए है, उनको अब आप समापत समझो। दुर्योधन ने कहा, बाबा भीष्म पितामह से बाण कोई ले न जाए। कहा, बाबा मेरे को बाण दे दो पितामह, कल मैं सुबह युद्ध भूमि में आपको दूंगा। बाण ले गया दुर्योधन, जाके रख दिया अपने पास। आधी रात को कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ उठो। बोला, मैं थक गया हूं, सारा दिन युद्ध किया है, अब क्यों जगा रहे हो। बोला, नहीं उठो। आधे घंटे के बाद कहा, अब तो उठो, चार बज गए, क्या करना है कृष्ण। बोला, दुर्योधन के पास जाओ। भाई दुर्योधन के पास जाके क्या करूं। बोला, एक काम है, तुमको उसने वचन दिया था, जब गंधर्वों ने उसको बंदी बना दिया था, तुम्हारे मित्र चित्ररथ गंधर्व ने उसको बंदी बनाया था, उसके साथ ही कर्ण आदि उसको छुड़ा नहीं सके थे, युधिष्ठिर महाराज के कहने के ऊपर आपने उसको मुक्त कराया था, तब उसने आपको वचन दिया था, मांगो अनुज, क्या चाहिए छोटे भाई, तब आपने कुछ नहीं मांगा था, आज जाओ मांगो। अरे क्या मांगू। बोला, पांच बाण भीष्म के पड़े हैं, लेकर आओ। अर्जुन सुबह सवेले 5 बजे पहुंचा है दुर्योधन के कक्ष में। दुर्योधन ने कहा, कैसे पधारे अनुज, पार्थ क्या चाहिए, युद्ध बंद करना है, राज चाहिए। बोला, नहीं, 5 भीष्म वाले पितामह के बाण मेरे को दे दो, आपने मेरे को वचन दिया था, आज मैं वो वचन मांगने आया हूं। अर्जुन ने दुर्योधन ने कहा, मुझे वचन याद है, ये लो बाण, और बाण लेके चला आया। सुबह भीष्म पितामह शंख बजा के कहता है, युवराज दुर्योधन बाण लाओ पांच। पितामह बाण तो अर्जुन ले गया पूरा। अर्जुन को क्या पता बाण का, ये सब काम कृष्ण का है। आज मैं शांतनु पुत्र भीष्म ये वचन करता हूं कि अगर हरि को आज मैं अस्त्र न गाऊं तो गंगा पुत्र न कहूं, शांतनु पिता को ले जाऊं। भीष्म पिता मैंने वचन कर लिया कि आज या तो अर्जुन को मरा समझो, नहीं तो कृष्ण को अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा भीषण युद्ध किया, पहली बार अर्जुन को पसीना पोंछते हुए कृष्ण ने देखा कि अर्जुन माथे से पसीना पोंछ रहा है। आज तक अर्जुन को कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। कृष्ण ने कहा, ये बूढ़ा मार देगा तेरे को आज, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। और कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए रथ से कूद पड़े, और जैसे कृष्ण कूद रहे थे, यहां लिखा है, रितम अधिकार तुम अपवल तो रथ स्थ, एकदम रथ से कूदे, और जैसे वो रथ से कूदे अर्जुन जाके उसको कमर को पकड़ लिया। अरे कृष्ण आप वचन मत तोड़ो, कृष्ण उसको घसीटते हुए जा रहे हैं। और जाते जाते कृष्ण ने क्या किया, धृत्य रथ चरणाभ्यचाल दगोर, एक रथ का नीचे पहिया टूटा पड़ा था उसको हाथ में उठा लिया। भगवान का एक नाम है रथांग पाणी, रथ का अंग मतलब पहिया, पाणी मतलब हाथ। आज चक्कर हाथ में नहीं है, आज टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया। धरती कांपने लगी, भगवान अपना वचन तोड़ रहे हैं। तो भगवान ने अपनी ओतरी को धरती के ऊपर उतार दिया कि शांत करो इसको। और सुदर्शन चक्र को भगवान ने मंगाया, सुदर्शन चक्र हंसने लगा कि भगवान मैं भक्तों की रक्षा के लिए हूं कि भक्तों का गर्दन काटने के लिए हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन मैं भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करने के लिए आने वाला नहीं। तो भगवान ने रथ के पहिए को उठा लिया और कैसे दौड़े, तब लिखा है, हरि रेव हंत विभम गतोत्रिया। हरि कहते हैं शेर को, जैसे छोटा शेर का बच्चा बड़े हाथी के ऊपर झपकता है, ऐसे भीष्म पितामह बूढ़े हाथी हैं और कृष्ण छोटा शेर का बच्चा है, उसको मारने के लिए ऊपर लपका है। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरे वचन की लाज रख ली, अपना वचन तोड़ दिया, ऐसा कहीं और कौन करता है, केवल भगवान ऐसे करता है। अपने वचन को तोड़ के हराने में सुख लेता है और भक्त के वचन को सत्य करता है, ऐसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं भीष्म पितामह। अब कहते हैं, सीत विशिक हतो विश्रेण दंश क्षितज परिपुल्त आतिताय नुमे प्रसभम अभिससार मदवधार्तम सभव तुमे भगवान गतिर मुकुंद। अरे उस दिन तो आपने नहीं मारा भगवान, आप आ गए, और जैसे भीष्म पितामह ऐसे के सामने कृष्ण ऐसे आए ना, भीष्म पितामह ने बाण नीचे रख दिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और आंखों खुलों से कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे थे। तो अब कहे हैं, मैं आतिताई हूं, मैं दुष्ट हूं, मैंने बहुत तीखे बाण आपके शरीर के ऊपर मारे थे लेकिन आपने उस वक्त मुझे नहीं मारा। अरे मुकुंद अभी तो मुझे मुक्ति दे दो, अभी तो मुझे अंत समय में मेरे ऊपर कृपा करो। क्षितज परिपुलत आपके वितरीष्ण दंश क्षतज परिपुलत आपके सारे शरीर के ऊपर मेरे बाणों से घाव हुए थे, उनके अंदर से दिव्य, वैसे रक्त तो भगवान के अंदर होता नहीं है लेकिन लीला में ऐसे लग रहा था कि भगवान के सारी चमड़ी को छिन्न भिन्न कर दिया है। भीष्म कहता है, मैंने कर दिया था। प्रसभम अभिसार मद वधार्थम, मुझे मारने के लिए आप आए थे, उस दिन आपने नहीं मारा, मुझे छोड़ दिया था। सभव तुमे भगवान गति मुकुंद, आज तो मेरे को भगवान वो गति दे दो, मुक्त मेरे को, मुकुंद मेरे को मुक्त कर दो, आज मेरे ऊपर कृपा कर दो। और भीष्म पितामह अब प्रार्थना आपका आगे का श्लोक कह रहे हैं, विजयरस्त कुटुंबात तोतरे। कहते हैं आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया, अपना परिवार मान लिया। कुटुंब के भरण पोषण के लिए कूटनीति और बेईमानी भी की जाती है, कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए सब कुछ किया जाता है। आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था, उसकी रक्षा करने के लिए। भीष्म पितामह के तो सामने नहीं। इसके बाद एक दिन कर्ण के बाण के ऊपर एक यक्ष आके बैठा के मेरे को कृष्ण से बदला, अर्जुन से बदला लेना है, मैं उसको मारना चाहता हूं, और गले का निशाना लिया कर्ण ने उस बाण का। कर्ण का सारथी शल्य कह रहा है गले का निशाना मत लो, उसका सारथी बड़ा होशियार है, तुम छाती का निशाना लो। तो कर्ण कहता है एक बार कर्ण निशान लेता है तो बदलता नहीं है। शल्य कहता है क्या तुम राम हो कि जिसका बाण कभी चूकता नहीं है? तुमको मैं कहता हूं ये सामने वाला सारथी बड़ा होशियार है, बाण चलाया। कृष्ण ने घोड़ों को ऊपर से दबा दिया और एक फुट घोड़ा नीचे बैठ गए, अर्जुन का मुकुट उड़ गया बाण से और गला बच गया। अर्जुन का मुकुट उड़ गया था पहली बार, क्योंकि ये बाण प्राण लेने वाला था, लेकिन कृष्ण ने रथ को ऐसे बचाया कि अर्जुन के जान बच गई और केवल क्रीट चला गया, मुकुट चला गया। तो ये अर्जुन के रथ को इसने अपना कुटुंब बना दिया था। विजय रथ कुटुंबा ततो तरे धृत है रश्मिनी तत्श्री यक्षणे। आप घोड़े की लगाम पकड़ के बैठे हुए थे, ये पार्थ सारथी का दर्शन है। पार्थ सारथी का ध्यान करते हुए कहते हैं भगवती रतियस्तु मे मुमूर्षु। मुक्ति देने वालों को जो गति मिलती है वो मेरे को, मेरा मन आप में लगे, मेरी बुद्धि आप में लगे, मेरा भाव आप में बने, मेरा प्रेम आप में बने। यम ही निरीक्ष हतागता स्वरूपम। जैसे सारे आपका दर्शन करते हुए मारे गए, वो आपके रूप को प्राप्त होके सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया, आपके धाम में चले गए, भगवान आज मेरे ऊपर भी कृपा करो, मेरे को भी आज आप दर्शन तो दिया है लेकिन अब सदगति भी दे दो, ऐसा भीष्म पितामह का भाव है। और आगे भीष्म पितामह कहते हैं अब अंतिम समय मैं कृष्ण आपका ध्यान करता हूं। और ये प्रार्थना करते करते अब भीष्म पितामह की दो प्रार्थनाएं बची हैं, 32 से 42 श्लोक तक प्रार्थना है, 40वां श्लोक आया है। इसमें भीष्म पितामह को पंच अध्याय रास के गोपियों के पांच अध्याय याद आ गए। एक श्लोक में पांच अध्याय सब हैं और गोपियों की आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि भगवान कृपा करते हैं जब भगवान के कोई महान भक्त कृपा करे। तो भगवान के महान भक्तों में गोपियों से ज्यादा अधिक कोई भक्त नहीं है। ललित गति विलास वलगुहास, ये गोपियों के प्रणय गीत का वर्णन है। प्रणय निरीक्षण कल्पितुरोन्माना, ये गोपियों का भगवान की बांसुरी के ऊपर आना, भगवान का उनको जाने के लिए मना करना और उनको प्रणय गीत गाना, और उसके बाद भगवान ने रास में से उनसे जुदा हो जाना, और गोपियां क्या हो गई, कृत मनो कृतवया उन्मदंधा, वो भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने लगी, कृष्ण से अपने आप को अभिन्न मान के उनका अभिनय करने लगी। अभिनय का मतलब क्या, अभिनय जानते हैं ना, मतलब एक्टिंग करना, भाई जो है उसकी एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो उससे अलग नहीं अपने आप को मान रहे हैं। वो एक गोपी कहती है मैं, तुम चिंता मत करो, क्या करेगा इंद्र, अपनी साड़ी को कहती है मैंने देखो गोवर्धन उठा लिया। तो गोपियां ऐसे कर रही हैं, प्रकृतिम गतकील यस्य गोप वधवः। और फिर गोपियों ने गीत गाया और भगवान सामने आ गए। ऐसे भगवान जो गोपियों के प्रिय हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। उनका ध्यान आया है और इस ध्यान के बाद राजसूय यज्ञ का ध्यान आया है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, सारे राजा उनके सामने आके बैठे थे, अपना मस्तक झुकाया था, और यज्ञ के अंतिम समय उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने चप्पल संभालना साधुओं का और पत्तल उठाने का काम किया था। लेकिन जब यज्ञ पूरा होने लगा तो कहा कि अगर पूजा किसकी होनी चाहिए, सबसे महान कौन है, तो सबने कहा, और उस वक्त जरासंध के पुत्र, उसका नाम है सहदेव, उसने कहा कि इस वक्त कृष्ण से ज्यादा कोई महान व्यक्ति इस धरती के ऊपर नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा सत्य है, सत्य है, इसी की अगर पूजा होनी चाहिए। तो उस वक्त कृष्ण की अगर पूजा हो रही थी, उस वक्त शिशुपाल ने कृष्ण को गालियां देना शुरू की थी, और 99 गालियां पूरी हुई, 100 हुई, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गर्दन काटा था। तो ये राजसूय यज्ञ की याद आती है। मुनिगण नृपवर्य संकोल अंत सदसी युधिष्ठर राजसूय एषाम अहरणम उपपेत ईक्षणियो मम दृष्टिगोचरेशा विरात्मा। उस युद्ध में बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े ऋषि थे, लेकिन उन सब में आपकी अगर पूजा हुई थी और आपकी पूजा करते हुए मैंने कहा था आपकी पूजा होनी चाहिए, आज मेरे को वो सारा दृश्य सामने आ रहा है, और मेरी दृष्टि के सामने आज मुझे वो सब दिख रहा है, आज मैं वहां था, मैंने आंखों से ये सब कुछ देखा था आपका श्री कृष्ण। अब ये अंतिम श्लोक कह रहे हैं, 11वां श्लोक प्रार्थना का। तमिमा महामजम शरीर भाजम हे अजन्मा भगवान, आज मैं शरीर को छोड़ने वाला, हृदय हृदय दृष्टि तुम आत्मकल्पिता नाम, आज मेरे को पता लगा कि आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हो, अब मेरे को कोई संदेह नहीं है, आप सर्वत्र आप ही हैं, परमात्मा आपका ही एक विस्तार है, एक अंश है। प्रतिदृश्यमेव अनेक धार कम एकम समधिगत अस्मि विधुत भेद मोह, आज मेरे अंदर से सब द्वंद्व खत्म हो गए, अब दो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, आप एक ही हैं, सबके हृदय में विराजमान है, अब आप मेरे हृदय में भी है और मेरे आंखों के सामने भी है। और ये कहते कहते भीष्म पितामह ने खुली आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए सांस बंद किया, प्राण त्यागे, ऐसा और कोई धरती के ऊपर भाग्यशाली नहीं है जो भगवान का दर्शन करते हुए इस धरती से भगवत धाम गया हो। उस वक्त आकाश में पुष्पों की वृष्टि हुई, पक्षियों ने पर हिलाना और चूचू करना बंद कर दिया, और जितने ऋषि थे उठ के खड़े हो गए, और उन्होंने भीष्म पितामह कृष्ण की परिक्रमा की और कृष्ण को प्रणाम करके वहां से चले गए। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया करने का प्रबंध किया, और फिर वापस आके युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र की अनुमति से हस्तिनापुर के सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। तो ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम कथा को थोड़ा सा तेज में करके पूरी करनी है, कथा को भी पूरी करनी है। इसके बाद अब युधिष्ठिर राजा बन गए, तो श्री कृष्ण ने कहा अब तो मैं द्वारका जाऊं, तो भगवान द्वारका के लिए रवाना हुए, और पांडव उनको विदा करने के लिए कहां कहां से भगवान श्री कृष्ण गए, पंजाब से होते हुए, फिर हरियाणा से होते हुए, फिर मध्य प्रदेश से होते हुए, फिर गुजरात से होते हुए, फिर रास्ता लेके आगे जाके कच्छ में पहुंचे, जहां उनकी द्वारका, कच्छ से होते हुए द्वारका गए सौराष्ट्र में। तो भगवान का द्वारका जाने की तैयारी, और फिर द्वारका में भगवान का स्वागत कैसे हुआ, भगवान ने जाके शंख बजाया, भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर द्वारका वासियों का जैसे मुर्दे में प्राण आ जाते हैं, ऐसे खुश होके सब प्रफुल्लित होके भागते हुए कृष्ण के स्वागत के लिए आए, और सबसे कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक किसी से आंख मिलाई, किसी से को हाथ मिलाया, किसी से गले मिले, और अपने घर में गए तो रानियों ने अपने बच्चों को आगे भेजा जिनको कृष्ण ने आलिंगन किया, और रानियां कहती हैं आप कभी हस्तिनापुर जाते हो, कभी मथुरा जाते हो, आपकी जुदाई हमसे सही नहीं जाती है। और फिर अब भगवान वापस द्वारका में पहुंच गए, और द्वारका में भगवान पहुंचे, इसका बाद परीक्षित के जन्म की कथा है। समय आने के ऊपर उत्तरा माता ने परीक्षित को जन्म दिया, महाभारत में तो ऐसे लिखा है, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, कृष्ण ने उस वक्त कहा, सीधे सूत की ग्राम में चले गए और कहा, कौरवों और पांडवों की लड़ाई में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया है और अर्जुन से मेरी मैत्री में कोई भेदभाव नहीं है, तो ये बच्चा जीवित हो जाए। और बच्चा एकदम जीवित हो गया, और बच्चा जीवित हो गया। परीक्षित के लिए पंडितों ने कहा, ये महान महाराज पांडु जैसा वीर होगा, रामचंद्र जैसे गुणों वाला होगा, अर्जुन जैसा तीर चलाने वाला होगा, रंतिदेव जैसा दानी होगा, ऐसे जितने महान पुरुष है उन जैसा परीक्षित। और फिर कहा, एक समय इनका विवाह भी होगा, बहुत बड़ा महारानी के साथ विवाह होगा, पुत्र चार चार होंगे, समय आने के ऊपर ब्राह्मण का अपमान होगा और उस कारण से इनकी मृत्यु हो जाएगी जल्दी, लेकिन सदगति होगी। ऐसे उनके जन्म की कुंडली को निकाला गया और उसके बाद धृतराष्ट्र के गृह त्याग की बात है। विदुर महात्मा युद्ध में भाग नहीं लिया था, विदुर तो मंत्री थे, हस्तनापुर के धृतराष्ट्र के मंत्री थे। एक दिन दुर्योधन ने कहा, चाचा तुम दासी के पुत्र हो, खाते हमारा हो और पक्ष पांडवों का लेते हो, तुम्हारा वध कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र चुप रहा। विदुर धनुष बाण को दरवाजे के ऊपर रख के तीर्थ यात्रा करने चले गए, प्रभास क्षेत्र गए, श्री कृष्ण के स्वधाम जाने का सुना, मैत्रेय ऋषि के साथ उद्धव के कहने के ऊपर जाके तीसरा और चौथा स्कंद भागवत का उद्धव और मैत्रेय संवाद है, और सॉरी मैत्रेय और विदुर संवाद है। विदुर जन्म सार्थक करके अपने भाई धृतराष्ट्र को मोह से मुक्त करने के लिए हस्तनापुर आया। विदुर को देख के युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गए कि हमारे पिता से ज्यादा, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करते हैं, ऐसे विदुर ने हमारी रक्षा की है। आज हमारा काका पिता समान विदुर आज गया है। विदुर बड़े प्रसन्न हुए, दिन को तो अपनी यात्रा की कथा कहते थे, रात को धृतराष्ट्र को कहते थे, आप इस भीमसेन के दिए हुए टुकर के ऊपर पल रहे हो जिसने आपके 100 पुत्रों को मारा, कुत्ते की तरह यहां क्यों पड़े हो। धृतराष्ट्र कहता है, पहले दुर्योधन मेरा दुष्ट पुत्र था, अब तो युधिष्ठिर मेरी आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करता है। विदुर कहते हैं, पहले दुष्ट में मोह था, अब शिष्ट में मोह हो गया, लेकिन मोह तो मोह ही होता है। बोला, फिर मैं क्या करूं, अंधा हूं, कहां जाऊं। बोला, मेरे साथ चलो, अब घर छोड़ो। और विदुर के कहने के ऊपर धृतराष्ट्र रात को उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा तो गंधारी ने कहा, जीवन भर तुम्हारे पीछे चली हूं, अब मुझे मत छोड़ के जाओ। गंधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे के ऊपर हाथ रखा, रात रात में तीनों उत्तर दिशा में चले गए। दूसरे दिन सुबह युधिष्ठिर महाराज देखता है, कोई नहीं है, कहाँ गया पिता माँ, कहाँ गया विदुर काका, कहाँ गया पिता, कहाँ ताऊ, कहाँ गए धृतराष्ट्र महाराज, कहाँ है, कहीं पता नहीं लगा। नारद ने कहा, समय बलवान है महाराज, आपको भी जाना पड़ेगा, अब उनको छोड़ो, उनकी चिंता मत करो। आज के पांचवें दिन उत्तर दिशा में गंगा जी के किनारे पे धृतराष्ट्र अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर देगा और माता गंधारी उसके साथ सती हो जाएगी। तो ऐसे धृतराष्ट्र का भी विदुर ने उद्धार किया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने की कथा है। अर्जुन चला गया था पता लगाने के लिए कि कृष्ण का आगे क्या सेवा करनी है, पांडव भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने, और तब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे और अर्जुन के लिए यह समाचार भेजा था, मेरी रानियों को और बच्चों को आप हस्तनापुर ले जाना। रास्ते में कृष्ण ही ग्वालों के रूप में आके अपनी रानियों को अर्जुन के द्वारा अर्जुन को हरा कर ले गए। एक शराप था उनको, कृष्ण ही आया, रानियों को ले गया। कृष्ण अर्जुन बहुत दुखी हुआ कि मैं गांडीव वही, मैं वही बड़े बड़े महारथियों को मैंने हराया और आज कुछ गांव के ग्वाले मेरे को जीत कर और भगवान की रानियों का अपहरण करके ले गए। महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे चारों ओर से। भीमसेन से कहते हैं कि अर्जुन तो आया नहीं, अपशकुन हो रहे हैं, लगता है कुछ हो गया है। तब तक अर्जुन आया, बड़े दुखी, बाल बिखरे, मुकुट सर के ऊपर नहीं है। महाराज ने कहा, भ्राता क्या ब्राह्मण को दान देना नहीं, देने में तुमसे कुछ कमी हो गई। बराबर वालों के साथ सम्मान के साथ भोजन नहीं किया, किसी आपसे छोटे ने आपको हराया है, ऐसे जो कारण दुख के हैं वो सब पूछे, और अंत में पूछा कि हमारे मित्र हमारे संबंधी सारे हस्तिनापुर में सुख से द्वारका में सुख से तो है ना यदुवंशी। अब अर्जुन रो पड़ा, कहा किसकी बात कह रहे हो? श्री कृष्ण जिसकी कृपा से हम विश्व विजयी हुए, जिसकी कृपा से हमने महारथियों को जीता, आज वो श्री कृष्ण जैसे शरीर से प्राण निकलता है ऐसे हमारे से अलग हो गए। और ये सुनते युधिष्ठिर महाराज ने अपना मुकुट नीचे रख दिया, बोला जब कृष्ण ने दिया था ये राज, अगर कृष्ण नहीं तो ये राज हम नहीं करेंगे। भीमसेन ने अपना मुकुट नीचे रख दिया, नकुल सहदेव ने कहा हमको राज करने के लिए नहीं कहना। कुंती महारानी ने सुना कि अर्जुन वापस आया और मुझसे मिलने नहीं आया, आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ है। किसी ने कहा कृष्ण के स्वधाम की कथा सुना रहा है, कुंती महारानी के प्राण निकल गए, कृष्ण के जाने का सुना प्राण निकल गए, ऐसा एक दशरथ महाराज पिता है राम के ना आने का सुना प्राण निकल गए, ये कुंती महारानी ऐसी भक्त है कृष्ण के जाने का सुना प्राण निकल गए। एक तरफ कुंती की अर्थी उठ रही है, एक तरफ परीक्षित महाराज को राज तिलक दिया जा रहा है, और एक तरफ पांडव जो है वो वीर संन्यास लेके बद्रिक आश्रम की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में परीक्षित महाराज राजा बन गए। परीक्षित चारों ओर दिग्विजय करने के लिए गए, 10 दिशाओं के अंदर परीक्षित महाराज का रथ घूमा, जहां जहां गया लोगों ने पांडवों की प्रशंसा की, पांडवों के किए हुए धार्मिक कार्यों की सराहना की। इससे एक संकेत मिलता है, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कोई धर्मशाला बना गए हैं, कोई मंदिर बना गए हैं, तो हम आने वाले बच्चों को बड़ी प्रशंसा होती है कि कितना अच्छा काम करके गए। मरने वाले खाने वाले पीने वाले कमाने वाले तो लाखों करोड़ आते हैं, लेकिन धर्म का काम करने वाले बहुत कम होते हैं। जो अच्छा काम कर जाते हैं उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण वो होता है। और उसके बाद दिग्विजय के बाद महाराज परीक्षित एक दिन एक आश्चर्यजनक दृश्य देखते हैं। एक टांग के ऊपर लड़खड़ाता हुआ बैल, एक दुबली पतली आंखों से आंसू बहाती हुई गाय से बात कर रहा है। बैल पूछता है गाय से, तुम मां रो क्यों रही है? क्या तुम्हारे बच्चों को लोग मार के खा जाते हैं इसलिए रो रही हो? क्या लोग तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं इसलिए रो रही हो? गाय पूछ रही है कि आपकी 3 टांगे किसने तोड़ दी, आप एक टांग पे ऊपर लड़खड़ा क्यों रहे हो? इन दोनों की भाषा को परीक्षित सुन रहा था। उनके पीछे देखा एक दुष्ट राजा के रूप में हाथ में डंडा लेके और बैल की टांगों को मार रहा है और गाय को मार रहा है। परीक्षित महाराज के क्षत्रिय तेज में उत्थान आया, तलवार निकाली, बोला दुष्ट, जिस राज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अभी तक सुरक्षित हैं, ये पांडवों का राज है, और यहां अधर्म में और गाय और बैल के ऊपर हाथ उठाने वाले का मैं हाथ नहीं गर्दन भी काट दूंगा। भयभीत हो गया, राजा के वेश उतार दिया, परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया, महाराज मेरे को जीवन दान दो, मेरे को जीवन दान दो, मैं कलयुग हूं, मेरा समय आ गया है। समय तो पहले आया, जब तक कृष्ण था तब कल चल कर तब तक कलयुग आ नहीं पाया, कृष्ण के जाते हुए कलयुग ने अपने पांव पसार लिए, मैं कलयुग हूं महाराज। तो महाराज ने पूछा आप कौन हो बैल? उसने कहा महाराज आप खुद सोच लो, कोई किसी को दुख नहीं देता है, हर एक अपने कर्मों का दुख स्वयं भोगता है, मन से दुख की उत्पत्ति होती है। भगवान ने कहा, परीक्षित महाराज कहते हैं आप धर्म हो और गाय धरती है, धरती माता आतिताई राजाओं की कारण रो रही थी, और बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ है, 4 खंभे हैं धर्म के, जिसके ऊपर धर्म खड़ा है, सत्य दया तपस्या और पवित्रता। ये 4 खंभे याद रखो क्या है, दया तपस्या सत्य और पवित्रता, दया तपस्या सत्य और पवित्रता, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। अब कलयुग कहता है महाराज मुझे कुछ रहने के लिए जगह तो दो, तो 4 जगहें कलयुग को दी परीक्षित महाराज ने। सुरापान जहां नशा होता है, शराब पिया जाता है, सोना जहां पशु हत्या होता है, मांस आहार होता है, विभचार जहां स्त्री पुरुष का विवाह से बाहर संग होता है, द्यूतम जहां जुआ होती, चार स्थान कलजों को दिए, ये चार धर्म के स्तंभ नाम याद कर लो। एक एक दोष कलजुग के रहने वाला धर्म के एक खंभे को गिराता है। पशु हत्या से दया चली जाती है, बकरे को काटेंगे तो दया दिल में नहीं रहेगी, मांस आहार और पशु हत्या से दया चली जाती है। विभचार से पवित्रता चली जाती है, नशा करने से तपस्या नाश होती है, और जुआ करने से सत्य का हास होता है, सत्य बिगड़ जाता है। तीन पांव धर्म के टूटे हुए थे, न दया थी, मांस आहार के कारण दया चली गई, नशे के कारण तपस्या चली गई, विचार के कारण पवित्रता चली गई, थोड़ा सा सत्य का एक पांव बचा हुआ है कलयुग में, वो भी जुआ के कारण टूटा। ये चार कलयुग के, आज कलयुग जिसको दिया, कलयुग को जो जगहें दी थी ना, कलयुग को वो जगह रहने की मिल नहीं रही थी, आज सब घरों के अंदर कलयुग का राज है, सब जगह नशा है, मांस आहार है, विभचार है, जुआ है, क्या नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज ये चार जगह है तो मुझे रहने के लिए पूरी नहीं पड़ेगी, कोई एक जगह और दे दो। महाराज ने कहा जहां स्वर्ण है, जहां धन इकट्ठा होता है वहां रहो, जहां धन इकट्ठा होता है वहां झगड़ा होता है, और झगड़ा कलयुग की निशानी है, कल है, कल है मतलब कलयुग, कलयुग मतलब झगड़ा। ये पांचवी जगह भी दे दी कलयुग को। इसके बाद महाराज परीक्षित एक दिन मृगया करने के लिए गए, शिकार करने के लिए गए, अपने सारे समाज से अलग हो गए, प्यास लगी, सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, ऋषि को ध्यान में देखा, अरे ऋषि राजा के आने के ऊपर स्वागत करे, उठे जल पान के लिए पूछे, लेकिन ये तो आंखें बंद करके बैठा है। महाराज ने कहा ऐसा तो नहीं है कि राजा से ऋषि मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजा विषय ही होते हैं। चेतना महाप्रभु कभी प्रताप रुद्र महाराज से मिलना नहीं चाहते थे, सबने कहा मिलो, लेकिन कहा नहीं राजा से नहीं मिलूंगा, सन्यासी को नहीं मिलना चाहिए। आजकल तो सारे महात्मा साधु मंत्रियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक जमाना था राजा महाराजा से महात्मा लोग मिलते नहीं थे, दूर से खड़े होकर नमस्कार करके चले जाते थे राजा लोग। तो सम्यक ऋषि का परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सांप सम्यक के गले में परीक्षित ने डाल दिया कि अगर झूठ मूठ का मुझसे बचना चाहता होगा तो सांप देख के चौंक जाएगा, और सचपच समाधि में होगा तो प्रणाम करके चला जाऊंगा। सांप डाला महाराज तो सम्यक ऐसे ही समाधि में बैठे थे, परीक्षित प्यासा वापस चला, लेकिन कह रहा है मेरे कितना बड़ा अपराध कर लिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, भगवान मेरे को दंड देना, मेरे कुल का नाश नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण का अपराध कुल का विनाश करने वाला है। ऐसे सोचते हुए परीक्षित जा रहे थे, कुछ बच्चों ने सम्यक के गले में सांप देखा, वो दौड़ते हुए सम्यक के बेटा जो कोशक की नदी में नहा रहा था, श्रृंगी उसका नाम था, उसको कहा तुम्हारे पिता के गले में महाराज ने मरा हुआ सांप डाला। वो कच्चा ब्राह्मण तपस्या का बल था लेकिन निर्णय करना नहीं आता था, बुद्धि निर्णायक नहीं थी। कोशिकी का जल हाथ में लेके कहा जिस महाराज ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, सातवें दिन उसको तक्षक सांप डसेगा और मरेगा। शराब दे दिया। बच्चा दौड़ता हुआ आया, अपने पिता के साथ लपट के रोने लगा। पिता समाधि से उठा, बोला बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे को किसने कुछ कहा क्या? बोला नहीं कहा किसी ने कुछ नहीं, महाराज आपके गले में मरा सांप डाल के गए। बोला हमारे गले में कोई माला डाले या सांप डाले हमारे को क्या है, हम तो साधु हैं। बोला पिताजी मैंने उनको शराब दे दिया। बोला अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा धरती के ऊपर नहीं मिलेगा। कलयुग ने कच्चे ब्राह्मण को अपना निशाना बनाया। बहुत कथाकार आपको सुनाएंगे कि महाराज परीक्षित के माथे के ऊपर सोने का मुकुट था, वो भी जरासंध के राज का लूटा हुआ मुकुट था, उसके अंदर कलयुग आ गया। कभी नहीं मानना, ये सत्य नहीं है। आचार्यों ने, गुरुजनों ने, टीकाकारों ने भागवत में इस बात को नहीं माना है। जिसको जन्म से पहले भगवान का दर्शन मां के गर्भ में हो, ऐसा परीक्षित, जिसने कलयुग के ऊपर, काल के ऊपर विजय प्राप्त की हो, जो धर्म को बैल के रूप में पहचानता हो, क्या कभी कलयुग साहस कर सकता है उसके माथे के ऊपर चढ़ने का? नहीं। कलयुग ने कच्चे ब्राह्मण को अपना शिकार बनाया पहला, और उसके द्वारा क्षत्रिय को श्राप दिलाया। सम्यक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है। उसने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ महाराज परीक्षित को सावधान करो कि मेरे छोटे बेचन बेटे ने आपको अब शाप दे दिया है, आपकी सदगति हो, आप अपना कुछ साप के निवारण का साधन करो। अभी महाराज परीक्षित अभी तक अपने राज के महल में नहीं पहुंचे थे, गेट से अंदर जा रहे थे, तब तक किसी ने कहा, सम्यक ऋषि का शिष्य मिलने आया है, वापस लौट के आए। कहा, मैंने आपके गुरुदेव का अपराध किया है, मुझे क्षमा करना। बोला, गुरुदेव ने आपकी सदगति की कामना की है, लेकिन आपको सावधान किया है कि उनके छोटे बच्चे ने आपको 7 दिन के बाद तक्षक सांप के काटने से मरने का श्राप दिया। परीक्षित महाराज वहीं खड़े रहे, राजमहल में नहीं गए, रानियों से नहीं मिले, कोष को नहीं देखा, राज सिंहासन को नहीं देखा। कृपाचार्य गुरु को प्रणाम करके कहा, मेरे बेटे जन्मेजय को राज तिलक दे देना, अब मैं यहां से गंगा जी के तट पे जाता हूं। परीक्षित वहां से सीधे गंगा तट पे चले आए, सुखताल में आए, और ये समाचार भी पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। बड़े बड़े ऋषि आने लगे, व्यास देव आए, उनके पिता पराशर आए, उनके गुरु नारद आए, और ये सब ब्राह्मण ऋषि इकट्ठे हो गए। परीक्षित ने सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझसे अपराध हो गया ब्राह्मण का, मैं अब अनशन करके मैं अन्न जल नहीं लूंगा, मैंने भागीरथी गंगा का शरण लिया है, आप सब भगवान विष्णु की कथा बताइए, मुझे बताइए जिसका मरण नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जो मरने के निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा था, इतनी देर में हस्तनापुर के गलियों के अंदर से निर्वस्त्र सुखदेव महाराज 16 साल का सुंदर सांवले रंग में पागल की तरह आ रहा था। छोटे लड़के और लड़कियां उसके पीछे पागल के ऊपर जैसे पत्थर मारते हैं ऐसे करती हुई आ रही थी। अचानक सुखदेव महाराज के ऊपर नजर पड़ी, सभा में सबकी, परीक्षित महाराज के साथ सारे ऋषि उठ के खड़े हो गए। व्यास देव और नारद को छोड़ के सबने उनका स्वागत किया, वो पिता था, वो गुरुदेव था, वो बैठे रहे। सबने सुखदेव महाराज को सिंहासन के ऊपर विराजमान किया, सुखदेव महाराज सिंहासन के ऊपर बैठ गए। परीक्षित ने कहा, आपको भगवान श्री कृष्ण ने ही भेजा है, क्योंकि कृष्ण हमारे पूर्व पांडवों के बहुत हितेशी मित्र थे, नहीं तो राजाओं के घर में आप जैसे संत का आना कैसे संभव है। आपको कृष्ण ने निश्चित रूप से भेजा है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अंत समय जिसका हो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सब लोगों का सब समय सब जगह कल्याण हो ये कारण कौन सा साधन है, और जिसका मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। यहाँ पहला स्कंद पूरा होता है 19 अध्यायों का, और दूसरे स्कंद में सबसे छोटा स्कंद है, 10 अध्याय है केवल। पहले अध्याय में परीक्षित महाराज के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए सुखदेव महाराज कहते हैं, आपका प्रश्न धन्य है, मृत्यु जिसके निकट है वो भी दूसरे के भले की बात पूछ रहा है, सबका हित चाह रहा है, अति वैष्णव प्रश्न है आपका, आपने पूछा करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस संसार में लोग सुबह से शाम तक धन के पीछे भागते हैं और रात को भोग में या नींद में अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ये है, तस्मात् सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। हे महाराज परीक्षित, जो ईश्वर है, जो हरि है, सबका दुख हरता है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सबसे प्रेम करता है, उस भगवान का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यम कीर्तत्वम स्मर्तव्यम यजिच्छति भयम्। अगर भय से मुक्त होना चाहते हो तो उसकी कथा सुनो, उसका कीर्तन करो और उसका स्मरण करो। ये सब लोगों के सब समय सब जगह कल्याण का साधन है। ये भाग साधन भक्ति का पहला अंग है, कथा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान का स्मरण करना। ये माला को सुमरण ही बोलते हैं, इसके ऊपर जब जप करते हैं इसको सुमरण कहते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसके बाद सुखदेव महाराज ने कहा, पहले तो भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, प्रकृति में सब जगह भगवान है। फिर कहा भगवान का हृदय में परमात्मा के रूप में ध्यान करना चाहिए, और फिर कहा कि भगवान की भक्ति के अलावा देवताओं की पूजा करोगे तो संसार का सुख मिलेगा, रोग का निवारण करना है तो सूर्य की पूजा कर लो, अच्छी पत्नी चाहिए तो पार्वती शंकर की पूजा कर लो, लेकिन भक्ति करोगे तो भगवान मिलेगा, इसलिए भक्ति ही भगवान की करनी चाहिए। ये तीन अध्याय इस तरीके से पूरे होते हैं। तब सुखदेव महाराज को ध्यान आता है कि मैंने मंगलाचरण तो किया नहीं, कथा चलान बोलना शुरू कर दिया। तो सुखदेव महाराज कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं, कहते भगवान आपका नाम, आपका कीर्तन, आपका पूजन सबको पवित्र करने वाला है, तत्काल पवित्र करने कर देता है, दान तप यज्ञ ये कभी फल नहीं देते हैं जब तक आपको अर्पण नहीं किए जाते हैं, और चाहे कोई नीच जाति का हो, कोई होण हो, कोई आंध्र हो, कोई पुलिंद हो, कोई यवन हो, लेकिन भक्तों के भगवान के भक्तों का संग हो जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और फिर कहते हैं भगवान ये शरीर आपने बनाया, इसके अंदर आप बैठे हो, अब आप मेरी वाणी के ऊपर आके जैसे भगवान आप चाहो वैसे मुझसे कहलाओ। बहुत सुंदर सुखदेव की स्तुति है। और नारद जी अब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के विषय में। नारद ने एक दिन ब्रह्मा जी को समाधि में देखा, बोला पितामह, मेरे पिता आप ही सृष्टि करता हो, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करता जरूर हूं, लेकिन भगवान हमारा स्वामी है, उसके इशारे के ऊपर हम सब देवता ऐसे चलते हैं जैसे बेल के नाक में रस्सी डाल के मालिक चलाता है, इसलिए मैं भगवान की माया से मोहित ही मेरे को महान समझते हैं, भगवान समझते हैं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। और फिर सृष्टि कैसे करते हैं ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है। फिर सातवें अध्याय में 22 अवतारों का वर्णन किया है, और वे सब भगवान के अवतार आते हैं। और फिर आठवें अध्याय में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। नवें अध्याय में चतुर्श्लोकी भागवत बताई गई है, चार श्लोकों में भागवत को बताया गया है, भगवान से हमारा संबंध है, भगवान कैसा है, भगवान की हमको भक्ति करके भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, माया से कैसे बचना है। और दसवें अध्याय के अंदर भागवत के 10 विषयों का वर्णन है, भागवत में 10 विषय हैं। आपने सुना होगा भगवत गीता में 5 विषय हैं, आत्मा क्या है, मैं आत्मा हूं, भगवान कौन है, आत्मा जिसका अंश है, प्रकृति क्या है जो 3 गुणों से संसार में सबको बांध के बैठी है, काल क्या है, समय है जो सबको इस दुनिया में चला रहा है, और कर्म क्या है जिसको हम बदल सकते हैं। आत्मा को बदल नहीं सकते हैं, परमात्मा में परिवर्तन ला नहीं सकते हैं, काल के ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं, और प्रकृति हमारे इशारे से चल नहीं सकती, केवल कर्म हमारे हाथ में है जिसको हम बदल सकते हैं। तो मानव को ही केवल कर्म करने का अधिकार है, बाकी 84 लाख योनियों में, बाकी सब योनियों में उसको कहते हैं भोग योनि, जो कर्म किया है उसका फल भोगते हैं, वो कर्म नहीं कर सकते नया, केवल मानव ही हम कर्म कर सकते हैं, इसलिए हमको कर्म कृष्ण अर्पण कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थ कर्मणो वा अन्यत्र कर्म बंधन, भगवद गीता में विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए, विठल के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो कर्म संसार में बंधन का कारण होता है। तो 10 विषय क्या है भागवत के, इसका नाम हम आपको बता देते हैं, सर्ग भगवान विष्णु की सृष्टि, विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थान भूगोल खगोल जहां सृष्टि होती है, पोषण भगवान अपने भक्तों का कैसे पालन पोषण करते हैं, ऊति कैसे 3 गुणों के प्रभाव से लोगों का अलग शक्ल है, अलग रूप है, अलग आकृति है, अलग प्रकृति है, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति ऊती शब्द का अर्थ है कपड़ा उन बुनना। जैसे धागे तीन ऐसे होते हैं, तीन ऐसे होते हैं ना, ऐसे तीन गुण और तीन गुणों का आपस में मिश्रण से हमारे सब अलग अलग रूप बनते। उसके बाद है मनवंतर। मनवंतर का मतलब है भगवान का शासन, किस तरीके से भगवान इस संसार का शासन चलाते हैं। मनवंतर का मतलब भगवान का, ब्रह्मा जी के एक दिन में शासन कैसे चलता है। मनवंतर के बाद है ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा। और ईशानु कथा के बाद है आश्रय, किसका शरण लेना चाहिए। उसके बाद है निरोध, उसका मतलब है प्रलय। और फिर है मुक्ति, मुक्ति निरोध। दस हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरो मुक्ति निरोध आश्रय। तो यहां दूसरा स्कंद पूरा होता है। तीसरे स्कंद में विदुर का और उद्धव का मिलन होता है जमुना जी के तट पे, और कृष्ण कथा होती है। और विदुर पूछता है, उद्धव कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे उपदेश देके बद्रिक आश्रम जाने के लिए कहा। तो विदुर ने कहा, जो कृष्ण ने आपको उपदेश दिया है वो मुझे उपदेश दीजिए। तो उद्धव ने कहा कि मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए जब श्री कृष्ण मुझे उपदेश दे रहे थे, उस वक्त मैत्रेय ऋषि जो व्यास देव का मित्र है वहां आया था, मेरे सामने श्री कृष्ण ने कहा कि विदुर को मैत्रेय तुम उपदेश देना। विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय मेरे को याद किया। दुनिया में भगवान ने विदुर का नाम लेके अंत समय में याद किया। विदुर बड़ा प्रसन्न हो गया और विदुर वहां से मैत्रेय जी के पास हरिद्वार में आया। और हरिद्वार में मैत्रेय से पूछा कि मैंने महाभारत पढ़ा है, मेरे पिता व्यासदेव का विदुर व्यास का पुत्र है, धृतराष्ट्र पांडु और विदुर तीनों व्यास के पुत्र हैं, ये व्यास देव के पुत्र हैं। बोला, मैंने सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन सब लोग सुख को चाहते हैं, सबको दुख मिलता है, भगवान आकर ये सृष्टि करते कैसे हैं। तो मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तीसरा स्कंद शुरू किया। तीसरे स्कंद के 33 अध्यायों में दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन है, दो भगवान के अवतारों का वर्णन है, दो प्रकार की सृष्टि कौन सी है, असुरी सृष्टि और देवी सृष्टि। असुरी सृष्टि से हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु की सृष्टि का वर्णन है, और देवी सृष्टि से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का वर्णन है, और देवहूति और कर्दम से कपिल देव के प्रकट्य का वर्णन है। दो भगवान के अवतार कौन से हैं, पहले आधे भाग में 19 अध्याय तक भगवान क्रिया प्रदान वारहा देव का वर्णन है, जो सृष्टि करने के लिए पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाल के लाए। और दूसरे भाग में ज्ञान प्रदान कपिल देव का देवहूति के पुत्र के रूप में वर्णन है, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। ये भागवत में दूसरा सबसे बड़ा उपदेश है, कपिल देव का उपदेश एक माता अपनी देवहूति को। तो स्त्री भी भगवान की भक्ति करके भगवान से उपदेश सुनती है, उसका ये मान उदाहरण है। तो यहां ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिप की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और आदिति। आदिति के सारे पुत्र देवता हैं और दिति के पुत्र दैत्य हैं। कश्यप सायंकाल को यज्ञशाला में संध्या वंदन कर रहे थे। स्थान कौन सा था? यज्ञशाला। समय कौन था? संध्या वंदन का। दिति कामवश होकर कश्यप को पकड़ के पुत्र संतान के लिए प्रेरित करने लगे। कश्यप ने कहा नहीं, इस वक्त न स्थान अच्छा है, न स्थान सही है, न काल सही है, और भगवान शंकर इस वक्त भूत प्रेत को लेके घूमते हैं। भोग करने वालों के संतान भूत प्रेत होता है। लेकिन दित्ति नहीं मानी, कश्यप ने भगवान की इच्छा माना, और कश्यप जी दित्ति का इच्छा पूरी करके नहा धो के फिर अपने आसन के ऊपर बैठे, मंत्र उच्चारण करने लगे। दित्ति हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। शंकर जी को तो मैं मना लूंगी। कश्यप ने कहा तुम्हारे उदर के अंदर दो असुर पहले ही आ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये दुनिया में त्राही त्राही मचा देंगे, न गौ की रक्षा करने देंगे, न ब्राह्मण की सेवा करने देंगे, न भगवान की भक्ति करने देंगे, लेकिन इनको मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आएगा। दिति कहती अच्छा है, ब्राह्मण के शराब से तो नहीं मरेंगे ना, लेकिन मेरे को कृपा करो। तो दिति की क्षमा याचना मांगने के ऊपर, अपनी गलती को मानने के ऊपर, कश्यप कहता है फिर तुम्हारा पोता ऐसा महान भक्त होगा, जब भी भक्तों का नाम गिना जाएगा तो प्रहलाद का नाम सबसे महान होगा। तो आज दिति की गलती मानने के ऊपर कश्यप की कृपा से प्रहलाद का आशीर्वाद मिला है। तो यहां कहते हैं जो भोग अपनी इच्छा से करता है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करता, समय का ध्यान नहीं करता, संध्या काल का ध्यान नहीं करता, स्थान का काल नहीं करता, जैसे ये धर्म, ये तीर्थ स्थान है, ये भोग के स्थान नहीं है, यहाँ आना चाहिए तो बड़े संयम से रहना चाहिए, तो ऐसे स्थानों के ऊपर अगर कोई संभोग करता है तो असुर प्रवृत्ति के बच्चे या राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे या भूत प्रेत जैसे विचार वाले बच्चों का जन्म होता है। तो ऐसे असुरी प्रकृति के ये दो हिरणाकश और हिरणाकशी पर जन्म हुआ। इसमें हिरणाकश जो है गदा हाथ में लेकर और तीनों लोकों की विजय करने के लिए निकल पड़ा। वरुण लोक में गया, वरुण को कहा मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुमसे लड़ने का मुझे अभी इच्छा नहीं है, लेकिन तेरे को जो ये बहुत जरा लड़ने का भूत सवार है ना, ये भगवान विष्णु तुम्हारा इच्छा पूरी करेगा। तो उसने बोला विष्णु कहाँ है, बोला जाकर ढूंढो। नारद जी सामने आए, नारद जी ने पूछा कश्यप के पुत्र हिरणाकश कहाँ ढूंढ रहे हो, बोला विष्णु कहाँ है, बोला वो देखो वाराहदेव पृथ्वी को ले जा रहा है। ये वाराहदेव का प्रकट कहाँ से हुआ, ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन से चार कुमार पैदा किए, उनको कहा सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने कहा नहीं हम ब्रह्मचारी रहेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनके मस्तक से रुद्र नीचे गिरा, शंकर जी प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए, उसने कहा रोने लगे, उसको कहा सृष्टि करो, उसने भूत प्रेत बनाए, बोला बंद करो नहीं चाहिए ये सृष्टि, प्रलय का काम करना। उसके बाद सप्त ऋषि मन से बनाए, भृगु आदि ऋषि, और ये ऋषि को बनाने के बाद सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, उनको कहा आप सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी ने अपने सीधे हाथ की तरफ से पहला एक पुरुष पैदा किया, उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु। अपने वाम भाग से एक स्त्री को प्रकट किया, उसका नाम हुआ शत्रुपा। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, दोनों ने, ब्रह्मा जी ने कहा आप दोनों अब पति पत्नी बनकर सृष्टि को बढ़ाओ। उनके दो पुत्र हुए उतानपाद और प्रियव्रत, और उनकी तीन कन्याएं हुई देवहूति आकुटि और प्रकृति, देवहूति आकुटि और प्रसूति। तो ये पहला संसार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हुई, ये पहला संसार का गणना है, जनगणना है। और सबको कहा सृष्टि करो, बोले करें कहाँ, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो पाताल में चली गई है, गर्भ सागर में डूबी हुई है। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा जीव नीचे गुला चने जितना, और थोड़ी देर में बड़ा होने लगा और वाराहदेव का रूप धारण कर लिया। सब ने प्रणाम किया, वाराहदेव पृथ्वी को निकालने के लिए गर्भ सागर में चले गए, अपने मुख के अगर भाग में पृथ्वी को लेके आ रहे थे। हिरणाकश पीछे ललकार रहा था, हिरणाकश कह रहा था कहाँ जा रहे हो, हमारी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहे हो। भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोला कुत्ते भौंकते रहे, अपना काम करना चाहिए। पृथ्वी को लाके अपनी जगह पे स्थापित किया, फिर मुड़ के वाराहदेव ने
हिरण्याकश्यप का कुत्ते तुम हमारे शिकार हो। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, गदा युद्ध हो गया, त्रिशूल चलने लगे और शाम होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा वाराहदेव को, भगवान संध्या काल हो रही है, असुरों का बल बढ़ जाता है, आप कृपा करके इसका उद्धार करो। उस वक्त वाराहदेव ने एक जबड़े के ऊपर हाथ मारा, हिरण्याकश्यप नीचे गिरा, उसका प्राण निकल गया और सबने कहा वाराहदेव भगवान की। अब स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर अपनी रानी शत्रुपा के साथ रथ में चढ़कर सरस्वती नदी के किनारे बिंदु आश्रम, एक बिंदु सरोवर है गुजरात में, बिंदु सरोवर पे कश्यप कर्दम मुनि के आश्रम में आए। कर्दम मुनि को कहा, और कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको भी सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, वो तपस्या कर रहे थे सरस्वती के तट पे। भगवान ने प्रकट होके कर्दम ऋषि को कहा कि 5 दिन के बाद तुम्हारे पास स्वयं भूमनु अपनी पुत्री को लाएगा, आप उसका इनकार मत करना, विवाह कर लेना। तो ये पहला विवाह इस धरती के ऊपर भगवान ने जोड़ा बनाया कि देवहूति का विवाह कर्दम से होगा। और अभी कुटिया में बैठा था कर्दम, मनु जी आए, मनु जी ने प्रणाम किया, कर्दम ऋषि को प्रार्थना किया और कहा कि मेरी कन्या आपके योग्य है, गुण में शील में, आप इसको स्वीकार कीजिए। और कर्दम जी ने कहा भगवान ने मुझे कहा था। देवहूति कर्दम जी के साथ रहने लगी और मनु जी उस अपनी कन्या को घर गृहस्थी का सामान देके वापस अपने राज में चले गए। इस विवाह में कोई कार्ड भी नहीं छपा था, कोई था ही नहीं किसको बुलाएं, कोई खर्चा वर्चा नहीं हुआ, माता पिता आए और कन्या की जरूरत की चीजें देके चले गए। आजकल विवाह में कन्या को देते हैं कम, खाने वाले बाहर वाले ज्यादा खा जाते हैं और बेकार का पैसा ज्यान हो जाता है, कोई उसका लाभ नहीं है। ये मैंने दक्षिण भारत में देखा है, दोपहर को वही इडली डोसा सबको खिलाएंगे, 2 घंटे में खाओ तो खाओ, नहीं तो अपने घर चले जाओ। लड़की को दोस्तों 2 किलो सोना देंगे, 2 प्लाट जगा कर देंगे ताकि लड़की तो सुखी रहे, खाने वाले को कुछ भी खिलाओ आपका कहेंगे इससे वो अच्छा था, कभी खुश नहीं होने वाले। इसलिए बेकार का क्या ऐसे खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग दुनिया में दिखावे में। अभी स्वयंभू मनु को कोई कमी थी क्या? महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों का विवाह एक ही दिन किया, सामूहिक विवाह किया, क्या गरीब थे क्या, खर्चा नहीं था क्या उनके पास? नहीं। तो इसलिए दिखावा कम करना चाहिए। अब देवहूति सेवा कर रही थी और कर्दम तपस्या कर रहे थे। देवहूति दुबली पतली हो गई, राजकुमारी थी, मैली कुचली हो गई। एक दिन कर्दम मुनि को ख्याल आया, कहा मनु पुत्री तुम्हारी इच्छा क्या है? बेचारी सर नीचे करके पांव से जमीन को खोदते हुए कहा कि आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि आप संतान दोगे। समझ गए कर्दम ने क्या किया, एक सुंदर महल बनाया, लेकिन देखा देवती अभी तक प्रसन्न नहीं है। अरे इसलिए कि मेली कुचली दुबली पतली है। कहा बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। देवती बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गई, विद्याधर हजारों स्त्रियां आके उसका उपटन लगाया, उसको बहुत सुंदर श्रृंगार कराया। अब देवती नव युवती होके बाहर निकली और विद्याधर कन्याओं के साथ उस विमान के ऊपर बैठी जो कर्दम ने अपने योग बल से बनाया था, और नंदन कानन और स्वर्ग के बगीचों में घूमने लगे उनके साथ। और घूमते घूमते कर्दम ने अपने को 1 को 9 में विभाजित किया और 9 कन्याओं का जन्म देवहूति के द्वारा हुआ। 9 कन्याएं, ये दूसरा जनगणना में 9 कन्याएं हुई हैं, और ये कन्याएं भी यानी महान कन्याएं हुई हैं। अरुंधति हुई वशिष्ठ की पत्नी, अत्रि की पत्नी अनुसुया हुई, ये सब देवहूति की बेटियां हैं। ये बड़े बड़े ऋषियों के साथ विवाह कराया गया इनका, जिनसे हमारा संतान हुआ है। 9 का नाम आप ढूंढ के देख लेना भागवत में, बड़े सुंदर नाम है 9 के, और 9 ही बड़ी बड़ी ऋषियों की कन्याएं हैं। अब कर्दम ने कहा अब मैं तपस्या करने जाऊंगा, संन्यास लूंगा। देवहूति कहती ये कन्याएं शादी करके अपने पतियों के घर चली जाएंगी, मेरा कौन देखभाल करेगा? आपने तो वचन दिया था मेरे पिता को कि जब पुत्र होगा तब जाएंगे। कर्दम को याद आया कि भगवान ने मुझे को मेरे घर में पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया था। तो आज कर्दम जी रुके हैं, और देवहूति का मतलब होता है जो भगवान को भी नीचे बुला सके, देव को आवाहन कर ले। सो कर्दम मुनि और देवहूति के यहां भगवान कपिल देव सुनहरी बालों वाले सिद्धों में कपिल भगवान का अवतार हुआ है। सार ब्रह्मा जी आदि सब देवता आए हैं, आशीर्वाद दिया है और ये कपिल देव के जैसे ही अवतार हुआ है। कर्दम ने कपिल देव की परिक्रमा की है। कपिल देव ने कहा, पिताजी आप अब भले उत्तर दिशा में हिमालय में जाके तपस्या करो, मुझे सर्वत्र देखो। भगवान का घर में जन्म हुआ और कर्दम संन्यास लेके उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ चल दिए और छोटे आज बड़े कपिल हो गए। एक दिन देवहूति कहती है, इतने बड़े तपस्वी ऋषि की मैं पत्नी, इतना बड़ा हमारा योग का बल पति में था, लेकिन मैं संसार के भोग में लगी रही, मुक्ति का मार्ग तो पूछा ही नहीं। बेटा सबके कल्याण के लिए कुछ हमको उपदेश कीजिए। इस स्थान को कहते हैं मातृ गया, जो बिंदु सरोवर है उसको कहते हैं मातृ गया। माताओं का तृपण करने के लिए वहां परशुराम अपनी माता रेणुका का तृपण करने के लिए गए थे। कभी आप गुजरात जाओ तो अहमदाबाद से 2-1 किलोमीटर और पालनपुर से तो केवल आधा घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है अहमदाबाद से और आधे घंटे का रास्ता है पालनपुर से। वहाँ बिंदु सरोवर है जहाँ कपिल देव का प्रकट्य है, जहाँ कर्दम और देवहूति के रहने का स्थान है। तो एक दिन देवहूति ने कर्दम मुनि को कहा, कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए कि सबका कल्याण मेरी माँ चाहती है। तो कर्दम मुनि ने देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया और कहा कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाए तो चरणों से भगवान को देखना शुरू करें और चरणों से ऊपर पाँव के ऊपर लगे हुए तुलसी दल को और चंदन को देखे, फिर पाँव में पायल को देखे, फिर घुटनों को देखे, फिर पीताम्बर पहने हुई धोती को देखे, फिर कमर में बंधी हुई कर ध्वनि को देखे, उसके बाद भगवान की नाभि को देखे, ध्यान करे कि ब्रह्मा कैसे यहाँ से प्रकट हुए, फिर भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर श्री जी का चिन्ह देखे, श्री वत्स का चिन्ह देखे, कौत्सव मणि का ध्यान करे, फिर भगवान का कंठ बहुत सुंदर देखे, फिर भगवान का मुख देखे। ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भक्ति एक ही साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और ये भक्ति केवल साधु के संग से मिलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और साधु वो होते हैं जो सहनशील होते हैं, जो दयालु होते हैं। ऐसे साधुओं का संग मिल जाए। देवहूति पूछती है, बेटा ये तो बताओ समय किसको कहते हैं, जीव का जन्म कैसे होता है और कैसे वो माया में फंस जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूरी गर्भ गीता बताई है सुखदेव कपिल देव ने, कि कैसे जीव माता और पिता के मिलने से 1-2 दिन के बाद एक बिंदु जितना होता है, 2 महीने के बाद बड़ा बनता है, फिर उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, तब परमात्मा को देखता है। जीव और परमात्मा के बीच में बातचीत होती है माँ के गर्भ में। जीव कहता है कि बहुत जूनियों में मैंने दुख भोगा है, अब भगवान मेरे को मुक्त करो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। ऐसे जीव जब कहता है तो भगवान उसको माँ के गर्भ से मुक्त करता है और दुनिया में जन्म लेते ही भगवान से किया हुआ वचन भूल जाता है। कोई कहता है मेरा पोता है, कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा नाती है, वो कहता है मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन सब उसको पकड़ लेते हैं और वो फिर मोह में पड़ जाता है और बड़े होते होते वो संसार में फंस जाता है। ऐसे माया उसको पकड़ के रखती है। और ये काल बड़ा बलवान है, ये काल भगवान का एक रूप है जो संसार में सबको चलाता है, और ये काल के चक्कर में संसार चलता रहता है। और 3 गुणों से भक्ति को करते हुए, सतोगुण में लोग भक्ति करते हैं तो भगवान के निकट जा सकते हैं, रजोगुण में भक्ति करते हैं तो झगड़ालू होते हैं, लोभी होते हैं, तमोगुण में भक्ति करते हैं तो आलसी होते हैं। ऐसे माता कहती है, जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम उच्चारण हो, यद नाम जीवा अगर गण नाम गणति, समझ लो जिसके मुख से गोविंद हरि राम कृष्ण निकल रहा है ना, तो इसने सब तपस्या कर ली है, सब तीर्थ कर लिए हैं, सब यज्ञ कर लिए हैं, सब तप कर लिया है, ये सब अगले जन्मों में कर लिया है, इसलिए इसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। इसका मतलब भगवान का नाम जिसके मुख से निकलता है उसने सब कुछ पहले कर लिया है, ऐसा मान लेना चाहिए। और फिर भगवान की पूजा करे और साधु संत के आने के ऊपर उसका आदर नहीं करे तो भगवान उससे खुश नहीं होते। अच्छा लगता है हमारे विठ्ठल रुक्मणी मंदिर के बाबूजी पंडित जी हम मंदिर में दर्शन करने कल गए, ये पढ़ रहे थे कुछ शास्त्र को, नमस्कार करके उठ के आए हमारे साथ खड़े। इसको कहते हैं भगवान की पूजा करते हो फिर भी कोई साधु संत आ जाए तो भगवान को नमस्कार करके साधु संत का सम्मान करना चाहिए, ये भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। ये देवहूति माता को कपिल देव कहते हैं केवल भगवान की पूजा करे और आने वाले का सत्कार न करे, उसको सबके हृदय में भगवान न देखे, केवल मूर्ति में ही भगवान देखे, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि अभी तक कुंठित है, उसको सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। फिर कहा कि कोई बड़ा वेद ज्ञान वाला ब्राह्मण हो लेकिन भक्तिहीन हो, और कोई कोई चाहे कोई चंडाल हो लेकिन उसके हृदय में भगवान ने कृपा करके भक्ति दी है, नाम का स्मरण कर रहा है, तो उसको भगवान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे बहुत अद्भुत उपदेश माता देवहूति को कपिल देव का है। और यहाँ तीसरे स्कंद की पूर्णाहुति होती है तो चौथे स्कंद में चार विभाग हैं। पहले सात अध्यायों में यज्ञ, दक्ष के यज्ञ का वर्णन है, फिर पांच अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है, फिर 11 अध्यायों में सबकी इच्छा पूरी करने वाले पृथ्वी महाराज का चरित्र है, और 8 अध्यायों में मुक्ति का प्राचीन बरित और प्रचेताओं का वर्णन है। तो ऐसे चौथे स्कंद में ये चार विभाग हैं। पहले प्रश्न आता है अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, जगदीश का ध्यान कर रहे थे, तो उनके सामने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बुलाया एक जगदीश को, आप तीन आ गए। बोला हम तीनों जगत के ईश्वर हैं, मैं सृष्टि करता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर ने कहा मैं पालन करता हूं, शंकर ने कहा मैं व्यास, विष्णु ने कहा मैं पालन करता हूं, शंकर ने कहा मैं अंत में प्रलय करता हूं, तो तीनों को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। अनुसुया और अत्रि के घर में ये तीनों पुत्र हुए, दत्तात्रेय विष्णु के अंश से हुए। महाराष्ट्र में दत्त भगवान की बहुत पूजा होती है, दत्तात्रेय विष्णु के अंश से हुआ, चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुआ, और दुर्वासा शंकर जी के अंश से हुआ। और फिर कहते हैं प्रसूति की एक कन्या सती हुई और सती को कोई संतान नहीं हुआ। बोला क्यों नहीं हुआ? तब दक्ष के यज्ञ का वर्णन आता है। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, पहला कहां किया? प्रयागराज में। सारे प्रजापति आए, सारे देवता आए, ब्रह्मा जी वहां आए, शंकर जी बैठे थे, सब लोग यज्ञ में बैठे थे। दक्ष आए तो सब उठ के खड़े हुए, सब उठ के खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं उठा क्योंकि दक्ष का पिता है, और शंकर जी तो समाधि में था, पता ही नहीं लगा कौन आया। लेकिन दक्ष ने शंकर की ओर देखा, ये मेरा जमाई है। जमाता कहते हैं ना, जमाई कहते हैं ना, जमाई का मतलब है जिसको जिमाना पड़े सारा दिन, सारी उम्र जिमाते रहो। और बोला मांग भरता है, इसका मतलब सारी उम्र मांगती रहेगी। एक बार लाल निशान लगा लिया ना तो सारी उम्र मांगती रहेगी, देते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दक्ष ने कहा ये शंकर मेरा जमाता है, मेरे आने के ऊपर उठा नहीं है, इसको कौन अपनी कन्या देता, मैंने सती कैसे दे दी? कहां भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं तो ये शमशान में रहता है, घर तो आज तक बनाया नहीं है, भूतों के संग में रहता है, इसको कौन अपनी बेटी देता? शंकर का अपमान करने लगा, वैष्णव का अपना अपमान करने लगा। वैष्णवानाम यथा शंभु, ये भागवत का श्लोक है, सर्व वैष्णव में अग्रगण्य भगवान शंकर है, एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान शंकर है। तो शंकर के गण को क्रोध आ गया, कहा अरे बे 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 चिच चिच बकरी की तरह बोल रहे हो। तो दक्ष को भी क्रोध आया, उसने कहा तुम शंकर के गण जितने हो ना, भांग पियो, नशा करो, जिसका आए उसका खाओ, उसको शराब दे दिया, परस्पर शराब होने लगा। दक्ष उसका उस सभा से निकल के चले गए। शंकर जी वापस कैलाश आए, पत्नी अपनी को नहीं बताया। ये बहुत अच्छी शंकर की शिक्षा है, ससुराल वालों से झगड़ा हो, साले और ससुर से झगड़ा हो, पत्नी को कभी नहीं बताना, क्योंकि पत्नी का मन हमेशा अपने भाई और पिता में ज्यादा होता है। तुमने बताया घर में झगड़ा होगा, शंकर जी ने बताया ही नहीं, जाके समाधि में बैठ गए सुख से। अब कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, दक्ष ने कहा यज्ञ करो। बोला यज्ञ कैसे करें, शंकर नहीं आएगा तो यज्ञ नहीं होगा। बोला फिर मैं यज्ञ करता हूं। दूसरा यज्ञ दक्ष ने कनखल में किया, हरिद्वार में। सती अपने महल के, अच्छा महल तो क्या है, सती कैलाश में अपने शंकर जी के पास वृक्ष के नीचे खड़ी थी, तो ऊपर आकाश मार्ग में कुछ विमान जाते देखे। विमानों के अंदर देवता और उनकी स्त्रियां, ऋषि और उनकी स्त्रियां जा रही थी। तो कहते हैं बहन कहाँ जा रही हो, क्या है? ये स्त्रियों का स्वभाव है, कहीं से कोई बारात गई, कोई आदमी गए, सब बाहर निकलेंगी, पूछेंगी बहन कहाँ जा रही हो, क्या हो रहा है, ये स्वभाव है इनका। तो वो पूछने लगी, तो उन्होंने कहा दक्ष महाराज के घर यज्ञ हो रहा है, हम सब वहाँ निमंत्रण में जा रहे हैं। सती कहती है मेरे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव और हम नहीं जाएं? शंकर जी को कहती है ये कैलाशपति, ये दक्ष के जमाई, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो ना चलें। शंकर जी ने कहा मैं जानता हूं सती, हमको निमंत्रण नहीं आया है। बोला पिता के घर में, मंदिर में, गुरु के घर में निमंत्रण की जरूरत है? जैसे ये कथा है, कोई भी बाहर से आए अंदर बैठे, निमंत्रण की जरूरत तो नहीं है? भगवान के घर में किसी को निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है। शंकर ने कहा आप ठीक कह रही हो, लेकिन कोई जानबूझ के निमंत्रण नहीं दे, वहां जाने से अपमान होता है और अपमान मरने से ज्यादा भारी पड़ता है। सती कहती है मैं जाऊंगी, मेरी बहनें आएंगी, मेरे भांजे आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, मां को देखे बहुत समय हो गया। शंकर ने कहा सती वहां जाना उचित नहीं है। सती को क्रोध आ गया, सती की आंखें लाल हो गई, लगता है कि शंकर को भस्म कर देगी। शंकर ने देखा कि अब रुकेगी नहीं, जाएगी, इसलिए अब ये मरेगी जरूर। अगर इसको मरना है तो अपने पिता के घर में मरे, मेरे घर में क्यों बला पड़े? बोला जाना ही है तो अपने पिता के घर में जाए, ऐसे क्यों? शंकर ने सोचा। शंकर ने कहा यहां मरेगी तो पिता का ध्यान करता हुआ मरेगी, तो फिर उसी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। वहां मरेगी तो मेरा ध्यान करती हुई मरेगी, तो वापस मेरे पास आएगी, तो इसको तो वापस मेरे पास ही आना चाहिए ना। सती यहां से तैयार होके सब श्रृंगार का सामान लिया और नंदी आदि गण उसके संग चले और ये यज्ञशाला में पहुंचे। मां ने कहा बेटी आओ, लेकिन किसी ब्राह्मण ने नहीं स्वागत किया। सती ने यज्ञशाला में देखा कि शंकर का स्थान नहीं है, समझ गई सती, कहा मेरे पति का अपमान किया गया है। ब्रह्मा आदि देवता जिसके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उस शंकर का यहां अपमान किया गया है। पिताजी मैं वापस जाऊंगी, मुझे कहेगा दक्षायणी शंकर जी, तो मुझे लज्जा आएगी, तुम्हारा दिया हुआ शरीर मैं रखना नहीं चाहती हूं। ऐसे कह के सती वहां बैठ गई और योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म किया और शरीर के टुकड़े 52 स्थानों पे जाके गिरे। वहां सब शक्ति पीठ बने हैं, पूरे भारतवर्ष में 52 शक्ति पीठ है। अब जो शंकर जी के गण थे उनको आया क्रोध, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। तो भृगुवंशी ब्राह्मण, वो जो भृगु जी महाराज थे, उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली, ऋभु देवता बाहर निकले और शंकर के गणों को वहां से खदेड़ के भगा दिया। ये बेचारे गण दुखी होकर वापस कैलाश आए। यहां नारद जी आए शंकर जी के पास, देखा शंकर जी तो बड़े ध्यान में बैठे हैं, प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम हो, सती कहां है? बोला दक्ष यज्ञ में गई है। बोला गई नहीं, ऊपर गई, बस इतना ही कहा, ऊपर गई और आपके गणों का बड़ा अपमान हुआ, बड़ा त्रास हुआ, बड़ा अपमान हुआ, बड़ा संकट हुआ, खदेड़ के भगा दिया गया। शंकर जी को क्रोध आया, एक बाल को झटक देके नीचे फेंका, उसके वीरभद्र नाम का एक गण पैदा हुआ। उसने कहा शंकर जी क्या आ गया है? बोला दक्ष के यज्ञ में जाओ, उसने जो अपराध किया है उसका, उसको दंड दो। वीरभद्र और गणों को लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंचा, अंधकार होने लगा, सुबह हुई है, सबने कहा अभी सूरज हुआ है, अभी आंधी कहां से आ गई, प्राचीन भरित का राज है, कोई चोर डाकू नहीं है, ये कौन आ रहा है? सती की माता कहती है, प्रसूति कहती है, ये शंकर का क्रोध आ रहा है। तब तक तो वीरभद्र वहां पहुंचा, जाते ही दक्ष को उठाया, ऐसे पकड़ा, दक्ष को पकड़ के और जो बकरे को काटने का, गर्दन काटने का लकड़ी का छुरा था, उससे दक्ष का गर्दन काटा और उसको दक्षिण अग्नि में स्वाहा कर दिया, भृगु की दाढ़ी को उखाड़ दिया, भग की आंख और पुष्प का दांत तोड़ दिया, किसी देवता का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, हाहाकार मच गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि बहा पितामह, दक्ष के यज्ञ में हमारा ये हाल हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा निमंत्रण हमको भी आया था, जहां झगड़ा हुआ वहां नहीं जाना चाहिए, गए क्यों थे? बब शंकर जब नहीं गया तो आप क्यों गए? शंकर को नहीं बुलाया तो आपको जाना नहीं चाहिए था ना? सब भागते भागते निमंत्रण में गए, सब निमंत्रण में जाना भी नहीं चाहिए। अब क्या करें? बाबा बोला शंकर जी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर शंकर जी के पास आए। शंकर जी क्रोध में नहीं है, ज्ञान मुद्रा में सनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बोला ये देवता आपसे क्षमा याचना मांगने आए हैं। बोला क्या करना है? बोला दक्ष के यज्ञ को संपन्न करो, इनके कृपा करके अंग भंग हुए हैं इनको ठीक करो। शंकर जी ने कहा चलो, ये इसको कहते हैं साधु वैष्णव। पत्नी का शरीर छूट गया, गणों का अपमान हुआ, लेकिन भला आदमी ब्रह्मा मनाने आया तो कोई झगड़ा नहीं, कोई पुरानी बातों को नहीं खोला, और शंकर जी चल पड़े और सब देवताओं के ऊपर अमृत दृष्टि डाली, वो तो ठीक हो गए। वहां पहुंचे तो बोला दक्ष का सर कहाँ है? बोला सर तो दक्षिण अग्नि में डाल दिया। बोला किसका डालना था? बोला बकरे का। बोला वो लाओ, हम तो बेटे के ऊपर हाथी का सर लगा दिया है, बकरे का कौन सा लगाना मुश्किल है, हमको तो ये काम करना आता है, हेड ट्रांसप्लांटेशन का मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। वो बकरे का सर लेके दक्ष के सर के ऊपर लगाया। अब बकरे के सर से दक्ष ने प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी शंकर जी से, और बकरे के बचे हुए बाल थे भृगु की दाढ़ी की जगह पे लगाया कि ससुराल का पुरोहित है, बकरे के मां कुछ पहाए यहाँ लगा दिया, और पुष और भग की आंख की जगह के बोला सूर्य की रोशनी में देखेगा यजमान के और आटा खाएगा सुखी रहेगा। और तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा और शंकर पहले थे और विष्णु जी वहां आ गए। कहते हैं कनखल वो जगह है हरिद्वार में जहां तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर एक समय में आगे खड़े हुए थे एक जगह पे। भगवान विष्णु को देखकर सबने प्रणाम किया, दक्ष ने उसका शरण लिया, और प्रहोतों ने कहा कि हमारा यज्ञ कैसे संपन्न हो? भगवान विष्णु ने कहा हमारे आने के बाद यज्ञ में कोई त्रुटि तो रहती नहीं है, आपने वैष्णव का अपराध किया, एक बड़े शंकर जी का अपमान किया, इसलिए आपका यज्ञ विध्वंस हुआ। अब शंकर जी से क्षमा याचना मांग ली है तो अब आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। ऐसे सात अध्यायों में धर्म के यज्ञ रूप तंतु को, सप्त तंतु के यज्ञ रूप भगवान यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन अगर वैष्णव का अपराध हो जाता है तो कभी फल नहीं मिलता। अब पांच अध्यायों में उत्तानपाद जो छोटा लड़का है स्वयंभू मनु का, उसके पुत्र ध्रुव का चरित्र इसके बाद शुरू होता है। पांच बज रहे हैं, कल ध्रुव चरित्र से आगे पांचवां छठा और सातवां स्कंद पूरा करेंगे, ऐसे श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो, क्योंकि सबका इच्छा है कि 19 तारीख को रविवार को कृष्ण जन्म उत्सव करें, ऐसा है क्या विचार है? हाँ, तो इसलिए हमको जल्दी नहीं है, तो कल पांच अध्यायों में ध्रुव का चरित्र, 11 अध्यायों में पृथु का चरित्र, और 8 अध्यायों में प्रचेता और प्राचीन भरित का चरित्र, और पांचवें स्कंद के अंदर भूगोल खगोल के अंतर्गत स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत और उसके आगे वंश में आगे महाराज भरत और भरत के पुत्र उनके पुत्र भगवान के अवतार ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत का वर्णन और कल सुनेंगे, और छठे अध्याय में पोषण भगवान कैसे करते हैं अपने भक्तों का ये सुनेंगे। कथा को यहाँ विराम देते हैं, अब आरती और कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।